आगे सबक देखिए भाई। फसलुन फिल कफाअह अल कफाअतु फिन निकाहि मुतबरतुन काला अलैहि सलातु वस्सलाम अला ला युज़व्विजुन निसाअ इल्ला अल औलिया वला युज़व्वजन इल्ला मिन अल अकफा ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها. گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ خیار بلوغ جو ہے وہ تین قسم کے افراد کو مل سکتا ہے، یعنی ایک تو صغیر جب بالغ ہوگا، اسی طرح صغیرہ باکرہ جب وہ بالغہ ہوگی، اور صغیرہ سیبہ. جیسے ابتدائی نکاح میں تھا بھائی، جیسے باکرہ بالغہ ہو یا سیبہ بالغہ ہو یا لڑکا بالغ ہو، تو ان میں سے کسی پر بھی ولایت اجبار ولی کو حاصل نہیں ہوتا، اور وہ ان کا کسی جگہ نکاح کروانا چاہتا ہے تو ان تینوں سے اس کو اجازت لینا پڑے گی. البتہ باکرہ کی خاموشی بھی اجازت اور رضامندی ہے، جبکہ سیبہ اور جو لڑکا ہے ان کی خاموشی رضامندی نہیں، ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے. تو خیار بلوغ کے موقع پر بھی اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا. باکرہ بالغ ہوئی ہے تو اس کو خیار بلوغ ملا، لیکن اس کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے، لہذا یہ کچھ دیر بھی خاموش رہی تو اس کا خیار بلوغ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. معلوم ہوا یہ راضی ہے، اس نے اجازت دے دی ہے. لہذا جس مجلس میں یہ بالغ ہو، جس مجلس میں حیض جاری ہو، اسی مجلس میں فوراً اس کا یہ کہنا کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یا میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں، یہ کہنا ضروری ہے. جبکہ سیبہ اور لڑکا جو ہے ان کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوگا جب تک وہ زبان سے اجازت نہ دے دیں، وجہ یہ کہ ان کی جو خاموشی ہے وہ رضامندی کی علامت نہیں ہے، لہذا ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اختیار جو کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کو ملتا ہے وہ مجلس کے اختتام تک رہتا ہے. جیسے ایجاب اور قبول کرتے ہوئے جب ایک شخص ایجاب کر لے تو دوسرے کو مجلس کے اندر خیار قبول مل جاتا ہے. تو معلوم ہو وہ اختیار جو انسان کی طرف سے ملے اس میں مجلس کا اعتبار ہے، لیکن وہ اختیار جو شریعت کی طرف سے ملے اس کا دار و مدار مجلس پر نہیں ہوتا، وہ مجلس کے بعد بھی باقی رہتا ہے. لہذا یہ سیبہ بالغہ ہوئی یا یہ صغیر بالغ ہوا لڑکا جو ہے، تو ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری، اور نیز ان کا یہ خیار مجلس تک نہیں رہے گا، بعد میں بھی جب تک یہ اجازت نہیں دیتے ان کو خیار بلوغ رہے گا بھائی، اور رد کر دیں گے پھر تو انہوں نے خیار بلوغ کو باقاعدہ استعمال کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس خیار میں امتداد ہوتا ہے جو خیار بلوغ ہوتا ہے. پھر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، جب اس خیار بلوغ کے اندر امتداد ہے، یہ مجلس پر بند نہیں، تو پھر تو باکرہ کو بھی خیار لمبا ملنا چاہیے. جواب کہ ہاں، باکرہ کو بھی جو خیار ملا تھا وہ لمبا ہی ملا تھا، لیکن اس کی خاموشی درمیان میں آ گئی، اور باکرہ کی خاموشی تو رضامندی کی علامت ہے، لہذا اس کی رضامندی آ گئی، اس لیے یہ خیار اس کا کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. اور جبکہ خیار عتق جو باندی کو ملتا ہے وہ آقا کے آزاد کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، لہذا وہ اسی مجلس تک رہے گا، مجلس کے اندر وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے، مجلس کے اس مجلس کے بعد نہیں. اسی طرح مخیرہ، وہ عورت جس کو خاوند نے اختیار دے دیا، میاں بیوی میں طلاق پر جھگڑا چل رہا ہے، آخر خاوند نے بیوی سے کہا کہ تمہیں میری طرف سے اختیار ہے، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا جدائی کو اختیار کرنا چاہتی ہو، تو اب دیکھو یہ ہے مخیرہ جس کو اختیار دیا گیا ہے، اور یہ اختیار اس کو خاوند نے دیا ہے، لہذا یہ اختیار مجلس تک رہے گا. اور نیز یہ خیار جو ہے یہ طلاق کے حکم میں ہوگا، اگر عورت جدائی کو اختیار کرے گی تو یہ طلاق شمار کی جائے گی، وجہ یہ کہ اختیار اس کو خاوند نے دیا ہے، اور خاوند تو طلاق کا مالک ہے، اور جو شخص جس چیز کا خود مالک ہو دوسرے کو بھی اس کا مالک بنا سکتا ہے، تو لہذا یہ مخیرہ اگر اپنے اختیار کو استعمال کرے تو پھر یہ طلاق شمار ہوگی. بخلاف اس کے وہ جو خیار عتق ہے یا خیار بلوغ ہے وہ طلاق شمار نہیں ہوگا، وہ فسخ نکاح شمار ہوگا، گویا نکاح کو فسخ کر دیا. वजह यह कि वो खियार सगीरा जो बालिगा हुई उसको भी मिला यानी मुअन्नस को भी मिला, और इसी तरह खियार इत्क जो है वो बांदी को मिलता है, तो ये तो मुअन्नस हैं और मुअन्नस को तो तलाक का इख्तियार नहीं होता, लिहाजा ये तलाक के हुक्म में नहीं है भाई। और फिर ये भी बतलाया था कि ये सगीर और सगीरा जिनका निकाह इनके वली ने करवाया है, ये सगीर मर गया या जिस औरत से इसका निकाह करवाया था वो मर गई, या इसी तरह वो सगीरा मर गई या जिस जगह उसका निकाह करवाया था वो खावंद मर गया, तो फिर दोनों एक दूसरे के वारिस बनेंगे भाई। और अगर बालिग होने के बाद ये सगीर या सगीरा बालिग हो गए उसके बाद इंतकाल हुआ लेकिन काजी के जुदाई करवाने से पहले पहले, तो इस सूरत में भी निकाह मौजूद है, लिहाजा मियां बीवी में से जो भी मरा दूसरा उसका वारिस बनेगा भाई। जबकि इसके मुकाबले में फजूली जो है किसी का निकाह करवा देता है यानी एक गैर मुतअल्लिका आदमी, तो फिर इस सूरत में याद रखो जब फजूली किसी का निकाह करवाता है तो वो निकाह उन लोगों की इजाजत पर मौकूफ रहेगा जिनका निकाह करवाया है, अगर वो इजाजत देंगे तो वह नाफिज होगा, वो इजाजत नहीं देंगे तो नाफिज नहीं होगा। तो फजूली ने एक मर्द और औरत का निकाह करवा दिया, अभी उनसे इजाजत नहीं ली थी कि उससे पहले ही उस मियां बीवी में से एक का इंतकाल हो गया, तो भाई इस सूरत में निकाह बातिल क्योंकि अभी नाफिज ही नहीं हुआ था, अभी उन्होंने इजाजत ही नहीं दी थी, इजाजत से पहले ही निकाह बातिल हो गया भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि गुलाम सगीर यानी नाबालिग और मजनून यानी पागल इनको किसी पर विलायत इजबार हासिल नहीं हो सकती, वजह यह कि इनको खुद अपनी जात पर विलायत निकाह हासिल नहीं है तो दूसरे की विलायत निकाह भी इनके सुपुर्द नहीं की जाएगी। और फिर यह भी बतलाया था कि काफिर जो है उसको मुसलमान पर विलायत इनकाह हासिल नहीं हो सकती, मसलन एक शख्स काफिर है लेकिन उसका नाबालिग बेटा या बेटी वो मुसलमान हो गए, तो अब ये काफिर बाप को अपनी मुसलमान नाबालिग औलाद पर विलायत इजबार हासिल नहीं है क्योंकि ममलिकत इस्लामिया के अंदर काफिर को मुसलमान पर विलायत नहीं दी जा सकती कि काफिर का मुसलमान पर कौल नाफिज हो जाए, इसीलिए काफिर मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, और नीज ये मुसलमान और काफिर एक दूसरे के वारिस भी नहीं बनते। अगरचे अहले किताब औरत से निकाह जायज है मुसलमान के लिए लेकिन खावंद का दीन है इस्लाम और बीवी यहूदिया या ईसाई है तो दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, अलबत्ता दोनों कुफार हैं तो फिर वारिस बनेंगे भाई और उनकी गवाही भी एक दूसरे के खिलाफ कबूल की जाएगी। और मैंने बतलाया था कि आपने सिराजी के अंदर पढ़ा होगा कि इख्तिलाफ दीन जहां हो तो फिर एक दूसरे के वारिस नहीं बनते, मैंने बतलाया कि ये इख्तिलाफ दीन सिर्फ मुसलमान और गैर मुस्लिम के एतबार से इसको देखा जाएगा, एक मुसलमान है और दूसरा गैर मुस्लिम है तो फिर ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर खुद कुफार आपस में उनका दीन अलग अलग है, एक ईसाई है एक यहूदी है भाई, तो फिर ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे, इसको इख्तिलाफ दीन नहीं कहेंगे। वजह यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा कि कुफर सारा का सारा एक ही दीन है भाई, चाहे उनका दीन मुख्तलिफ लेकिन इसको एक ही शुमार किया जाएगा, तो ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने यह मसला जिक्र फरमाया कि क्या असाबात के अलावा और रिश्तेदार जो हैं यानी जविल अरहाम क्या उनको भी विलायत निकाह हासिल है, तो इमाम साहब फरमाते हैं हां कि जब किसी शख्स के आसाबात ना हो तो फिर जविल अरहाम को भी विलायत निकाह हासिल है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, निकाह करवाना सिर्फ आसाबात के जिम्मे है, हदीस के अंदर आया है अन निकाह इलल आसाबात के निकाह जो है आसाबात के सुपुर्द है, लिहाजा दविल अरहाम को विलायत इजबार और विलायत इनकाह हासिल नहीं होगी। और नीस कियास भी इसकी ताइद करता है कि आसाबात के अलावा किसी और को विलायत निकाह नहीं होनी चाहिए, वजह यह कि विलायत निकाह जो आसाबात को शरीयत ने दी है इसलिए ताकि गैर कुफ के अंदर कहीं वो लड़की निकाह न कर ले या गैर कुफ में कोई उसका निकाह न करवा दे, गैर कुफ की तरफ यानी कम खानदान वालों की तरफ इनकी निस्बत न हो जाए, तो अपने खानदान को कम दर्जे के लोगों से बचाना यह असाबात का काम होता है, ये जविल अरहाम का काम नहीं भाई। वजह यह है कि जो असाबात जितने जिक्र हुए ये बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं
जी।
ये किसकी तरफ से रिश्तेदार हैं, बाप की तरफ से, और नसब का एतबार बाप की तरफ से होता है, तो लड़की ये बाप के खानदान की शुमार होती है, मां के खानदान की शुमार नहीं। तो जबील अरहाम वो तो औरतें हैं या औरतों की तरफ से जो रिश्तेदार हैं वो हैं, तो उनका तो खानदान अलग होगा और इनका खानदान अलग होगा, तो और अपने खानदान की हिफाजत ये खुद असबाद करेंगे। ये जबील अरहाम का क्या काम है कि वो दूसरों के खानदान की गैर कुफ की तरफ निस्बत से हिफाजत करें। तो गैर कुफ से अपने खानदान की हिफाजत करना ये किसके जिम्मे होता है? असबाद के, क्योंकि ये वो बाप के खानदान वाले हैं और ये अपने खानदान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इस विलायत की बुनियाद शफकत पर है, लिहाजा और रिश्तेदार जिनमें ऐसी रिश्तेदारी मौजूद है जो शफकत पर उभारने वाली है, उनको भी विलायत निकाह हासिल होगी। और ज़वील अरहाम भी इसी तरह हैं, उनमें भी बेइंतहा शफकत होती है। नाना है, नानी है, मां है और मामू है, खाला है, ये सब भी क्या है, इंसान पर शफकत करने वाले हैं, तो इनको भी विलायत इजबार हासिल होगी। और बाकी एतराज यह होता है कि हदीस के अंदर तो सिर्फ असबाद का जिक्र आया कि निकाह उनके सुपुर्द है, तो इमाम साहब तो गोया हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। तो जवाब के नहीं भाई, इमाम साहब हदीस की मुखालफत नहीं कर रहे। हदीस में वो सूरत जिक्र है जब असबाद मौजूद हों, और जब असबाद मौजूद हों तब तो इमाम साहब भी इसी बात के कायल हैं कि असबाद ही को विलायत निकाह मिलेगी और ज़वील अरहाम को नहीं मिलेगी। इमाम साहब वो सूरत जिक्र फरमा रहे हैं जब असबाद मौजूद ही ना हो, और जब असबात मौजूद ही ना हो उसका जिक्र तो हदीस में नहीं है, लिहाजा उस सूरत में फिर ज़वील अरहाम को भी विलायत निकाह हासिल हो जाएगी। और यहां पर इस्तेहसान का भी जिक्र आया था। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये इमाम साहिब ने, ये जो इमाम साहब फरमाते हैं कि दीगर ज़वील अरहाम को भी विलायत इनका हासिल होगी जब असबात मौजूद न हो, और ये इस्तेहसान है भाई। और मैंने बतलाया था इस्तेहसान उस मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील को कहते हैं जिसके मुकाबले में कियास आ जाए भाई। तो कुरान की आयत है और मुकाबले में कियास आ गया, तो इस आयत को तरजीह होगी और इसको इस्तेहसान कहेंगे, या हदीस के मुकाबले में कियास आ गया तो हदीस को तरजीह होगी और उस हदीस को इस्तेहसान कहेंगे, या इजमा के मुकाबले में कियास आ गया तो वो इजमा जो है उसको तरजीह होगी क्योंकि वो तो कतई दलील है, तो उसको इस्तेहसान कहेंगे भाई। तो इस्तेहसान वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है जिसके मुकाबले में कियास आ जाए, लेकिन ज्यादातर जो है ये इस्तेहसान का इतलाक जो है वो कियास खफी पर होता है। मैंने बताया कियास दो किस्म पर है, एक को कियास जली कहते हैं और एक को कियास खफी। कियास जली जिसमें बात जाहिर हो, अकल फौरन उस तक पहुंच जाती है कि ऐसा ही होना चाहिए, और कियास खफी वो है जहां जरा बात गहरी हो भाई, गौर व फिक्र करना पड़ता हो, फिर जहन वहां तक पहुंचता है, फिर अकल वहां तक पहुंचती है। तो लिहाजा इस्तेहसान का ज्यादातर इतलाक जो है वो कियास खफी पर होता है, लेकिन कियास खफी को भी तब इस्तेहसान कहेंगे जब उसके मुकाबले में कियास जली आ जाए। अगर कियास खफी के मुकाबले में कियास जली नहीं है तो फिर इसको इस्तेहसान नहीं कहेंगे भाई। उलमा लिखते हैं कि फतवा हमेशा इस्तेहसान पर होता है, कुल 20-22 मसाइल हैं सिर्फ जहां पर फतवा कियास पर है, वरना बाकी हर जगह फतवा इस्तेहसान पर होता है। तो कियास खफी के मुकाबले में अगर कियास जली न हो तो फिर इसको इस्तेहसान नहीं कहेंगे। और इस्तेहसान जो है ये पसंदीदा होता है भाई, मुस्तहसन का माना है पसंदीदा, तो इस्तेहसान को इस्तेहसान इसलिए कहते हैं कि ये पसंदीदा होता है, इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के लिए आसानी और सहूलत होती है। तो ये है इस्तेहसान भाई। और फिर ये भी बतलाया था कि अगर वली अकरब जो है वो गायब हो जाए गैबत मुनकतिया के साथ, यानी उसका पता ही नहीं चल रहा, और इधर एक रिश्ता है हम पल्ला लोगों का, बराबर के लोगों का, वो हाथ से निकल जाएगा और वली अकरब गायब है उसका पता ही नहीं चल रहा, तो क्या वली अबाद को इख्तियार होगा वो ये निकाह करवा सकता है? तो इमाम जुफर फरमाते नहीं, वली अबाद नहीं करवा सकता। वजह यह कि वली अकरब का हक है और किसी का हक उसके गायब हो जाने से बातिल नहीं हो जाता, वो बेशक गायब है लेकिन हक उसी का है, वो ही करवा सकता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये जो हक दिया है शरीयत ने ये शफकत के तौर पर है, और एक शख्स जिसकी राय से हम कोई फायदा ही नहीं उठा सकते, एक रिश्ता मौजूद है लेकिन वह आदमी गायब है, तो अभी भी इख्तियार उसी के सुपुर्द रखना इसमें कोई शफकत नहीं है। लिहाजा जब वली अकरब गायब है पता नहीं चल रहा तो वली अबाद उसके बराबर का हो गया, और जब दोनों बराबर हो गए तो दोनों में से जो भी निकाह करवा देगा तो ये निकाह हो जाएगा। दोनों बराबर किस तरह हुए, वली अकरब जो है उसमें रिश्ता करीबी है और वली अबाद में रिश्ता दूर का है, लेकिन वली अबाद जो है उसकी राय से इस वक्त फायदा उठाया जा सकता है और वली अकरब जो है इस वक्त गायब है उसकी राय से फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो रिश्तेदारी को देखें तो ज्यादा हकदार कौन है, वली अकरब, और अगर राय से फायदा उठाने को देखें तो ज्यादा हकदार कौन है, वली अबाद। लिहाजा दोनों बराबर हो गए, जब दोनों बराबर हो गए तो जो भी निकाह करवा देगा निकाह हो जाएगा। और मैंने यह भी बताया था वली अबाद निकाह करवा दे, वली अकरब मौजूद है, वली अकरब मौजूद है और बाप मौजूद है, फिर भी चचा ने रिश्ता करवा दिया बेटी सगीरा का, तो फिर याद रखो कि ये वली अकरब की इजाजत पर मौकूफ है, वो इजाजत देगा तो ये निकाह होगा, ये वो इजाजत नहीं देगा तो ये निकाह भी नहीं होगा। और अगर एक ही दर्जे के कई अवलिया मौजूद हैं, मसलन सगीरा के कई बालिग भाई हैं, तो हर एक को विलायत इजबार हासिल है, जब बाप दादा वगैरह नहीं है तो फिर हर भाई को विलायत इजबार हासिल है, लिहाजा जो पहले निकाह करवा देगा तो वह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और अगर दो भाइयों ने निकाह करवाया है, दो ने करवा दिया, तो फिर जिसने पहले निकाह करवाया था वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और अगर दोनों ने एक ही वक्त में निकाह करवाया है तो फिर दोनों में से एक भी मुनाकिद नहीं होगा। और फिर ये भी बतलाया था कि गैबत मुनकतिया किसे कहते हैं, तो साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि गैबत मुनकतिया यह है कि कोई शख्स ऐसी जगह पर हो जहां साल भर में एक दफा ही काफिला जाता हो। मैंने बताया कदीम जमाने में सफर बड़ा मुश्किल होता था, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फौरन सफर पर नहीं निकल सकते थे बल्कि इंतजार करना पड़ता था भाई, औरों का पता करवाना पड़ता था कोई और उस शहर की तरफ जाने वाला है या नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होते, कई दिन गुजर जाते, फिर अच्छे खासे लोग जब जमा हो जाते तो फिर सारे इकट्ठे काफिले की सूरत में उस शहर की तरफ चल पड़ते थे। तो कदीम जमाने में सफर बड़ा मुश्किल था, लिहाजा साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि गैबत मुनकतिया यह है कि वो वली अकरब ऐसे इलाके में गया है जहां साल भर में एक ही दफा काफिले जाते हैं। लेकिन साहिब हिदायत फरमाते हैं कि बाज उलमा फरमाते हैं कि गैबत मुनकतिया जो है उसमें अदना मुद्दत सफर का एतबार किया गया है, यानी जो तीन दिन की मसाफत पर जो वली अकरब मौजूद है तो फिर इस सूरत में इसको गैबत मुनकतिया कहेंगे, इतनी दूर गया हुआ है और इधर रिश्ता हाथ से निकल रहा है। जबकि बाजों ने कहा कि वली अकरब ऐसी हालत पर है कि उसकी राय का पता नहीं चल सकता, चाहे इसी शहर के अंदर वो गायब है, शहर के अंदर वो कहीं चला जाता है और कई कई दिन तक पता ही नहीं होता वो कहां गया हुआ है। अब बेशक देखो वो शराई सफर के फासले पर नहीं है, शहर के अंदर ही है, लेकिन ऐसी हालत पर है कि उसकी राय का पता नहीं चल सकता, तो फिर जितना इंतजार हो सकता है वो तो किया जाएगा, लेकिन अगर रिश्ता हाथ से निकल रहा है तो फिर वली अबाद निकाह करवा सकता है। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये जो राय है ये फुकहा की, ये फिका के यानी फिकी उसूलों के और फिकी दलाइल के ज्यादा करीब है, क्योंकि इस विलायत इनकाह की बुनियाद शफकत पर है। किस पर है? शफकत पर है, और जिसकी राय का ही पता नहीं चल सकता उसी के सुपुर्द इसको करना, इसमें कोई शफकत नहीं है, लिहाजा इस सूरत में वली अबाद करवा सकता है निकाह। और फिर साहिब हिदाया ने आखिर में यह मसला बतलाया था कि एक मजनूना है या मातूहा है जो मजनूनों के साथ मुशाबहत रखती है, उसका बालिग बेटा भी मौजूद है और बाप भी मौजूद है, तो किसको विलायत इनकाह हासिल होगी, तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं के बेटे को विलायत इनका हासिल होगी क्योंकि वो पहले दर्जे का असबा है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाप को विलायत इनका हासिल होगी क्योंकि बाप की शफकत बेटे से ज्यादा होती है, लेकिन शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां शफकत पर मदार नहीं है बल्कि असबा होने पर है, और असबा होने में बेटा मुकद्दम है, लिहाजा उसी को विलायत इनका हासिल होगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फिल कफाअह, अल कफाअतु फिन निकाह मुअतबरतुन, काला अलैहि सलातु वस्सलाम, अला ला युज़व्विजुन निसा इल्लल औलिया वला युज़व्वजन इल्ला मिनल अकफा। कफात के माने हैं बराबरी भाई, बराबर होना, हम पल्ला होना, हम मर्तबा होना। याद रखो शरीयत में इस बात का बड़ा ख्याल रखा गया है कि औरत का, लड़की का जहां निकाह करवाया जाए वो मर्द इसके हम पल्ला हो, इसके बराबर का हो, इससे अदना ना हो। वजह यह कि मुअज्जज औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि वो किसी अदना शख्स के मातहत रहे भाई, इसलिए क्योंकि खावन तो हाकिम के मिसल होता है और इस निकाह की वजह से औरत पर बहुत सी पाबंदियां आ जाती हैं, यहां तक कि खावन की इजाजत के बगैर इसके लिए घर से निकलना जायज नहीं है। तो लिहाजा ये औरत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं कि वो एक अदना और खसीस आदमी की हाकिमियत में जिंदगी गुजारे भाई, और नीज अदना शख्स के साथ निकाह करवाया जाएगा तो ये उस खानदान वालों के लिए भी हार और ऐब का सबब बनेगा, लोग उनको ताना देंगे कि तुमने तो अपनी बेटियां छोटे छोटे लोगों को दी हुई हैं भाई। तो लिहाजा इसलिए शरीयत में कफात का एतबार है भाई, कफात मोतबर है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर लोग फखर करते हैं, फखर करते हैं, तो लिहाजा उन चीजों में कफात मोतबर है। मसलन अरब, उनके यहां नसब पर बड़ा फखर किया जाता है कि हमारा, हम तो फला कबीले से हैं, फला कौम से हैं, तो लिहाजा नसब के अंदर भी कफात मोतबर है। इसी तरह आगे आपको बतलाएंगे इस्लाम मुसलमान होने में भी कफात मोतबर है, और इसी तरह आजादी के अंदर, और इसी तरह दीनदारी के अंदर, और माल के अंदर, और पेशों के अंदर, इनके अंदर कफात का शरीयत ने एतबार किया है भाई। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें शरीयत बराबरी का एतबार करती है भाई। और याद रखना ये जितनी चीजें यहां जिक्र होंगी जिनमें बराबरी का एतबार किया जाता है, ये वो चीजें हैं जिन पर लोग फखर करते हैं, और इनमें कमी आ जाए तो इसे लोग हार महसूस करते हैं भाई। तो ये फखर वाली चीजें हैं, लिहाजा शरीयत ने भी इनमें कफात का एतबार किया है भाई। देखिए भाई कहते हैं अल कफात फिन निकाह मोतबरतुन, कफात जो है निकाह में मोतबर है, यानी बराबरी। और याद रखना आगे साहिब हिदायत भी बतलाएंगे ये बराबरी मर्द की तरफ से होनी चाहिए, यानी जहां औरत या लड़की का निकाह करवाया जा रहा है वो मर्द जो है उसको इस औरत के बराबर का होना चाहिए, औरत की तरफ से बराबरी जरूरी नहीं। वजह यह कि हाकिम मर्द है, औरत तो उसके मातहत रहेगी, और नीज नसब का एतबार खावंद की तरफ से होता है, लिहाजा अगर अदना औरत भी उसके आकद में है तो नसब तो बाप की तरफ से ही जारी होगा, लिहाजा वो परवाह नहीं करता इस बात की कि उसके मातहत अदना औरत हो गई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा कफात का एतबार किसकी तरफ से किया जाएगा? खावंद की तरफ से किया जाएगा, औरत की तरफ से कफात मोतबर नहीं है भाई। तो कहते हैं अल कफात फिन निकाह मोतबरतुन, कफात यानी हम मर्तबा होना, हम रुतबा होना, ये निकाह के अंदर मोतबर है। काला अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला ला युज़व्विजुन निसा इल्लल औलिया। अला हर्फ तंबी है, सुनो, या इसका तर्जमा कर लें आगाह रहो। अला सुनो, ला युज़व्विजुन निसा, निकाह न करवाए औरतों का, इल्लल औलिया मगर औलिया, यानी औलिया ही औरतों का निकाह करवाएं और लोग इनका निकाह न करवाएं। वला युज़व्वजन इल्ला मिनल अकफाई, और इन औरतों का निकाह न किया जाए मगर हम पल्ला लोगों से ही, बराबर के लोगों से ही इनका निकाह किया जाए। आगे देखिए कहते हैं वली अन इंतजाम अल मसालिह बैन अल मुतकाफी ऐन आदतन। भाई नकली दलील जिक्र कर दी हदीस भाई, और अब अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वली अन इंतजाम अल मसालिह बैन अल मुतकाफी ऐन आदतन, इसलिए क्योंकि कहते हैं जो निकाह की जो मसलहतें हैं, देखो निकाह में बहुत सी मसलहतें होती हैं, एक नया खानदान बनता है और घर बसाना है, घर को चलाना है, औलाद हासिल होगी, औलाद की तरबियत करनी है, तो पूरे घर का एक निजाम चलाना है और इत्मीनान और सुकून की जिंदगी हासिल करनी है तो निकाह के बहुत सारे मकासिद होते हैं। और ये मकासिद और ये मसलहतें जो हैं उमूमन दो हम पल्ला लोगों में ही हासिल होती हैं। जब दोनों हम पल्ला होंगे, बराबर के होंगे, तब ही उनके मिजाज एक जैसे होंगे और ये मसलहतें हासिल होंगी। कहते हैं वली अन इंतजाम अल मसालिह, इसलिए क्योंकि ये जो निकाह की मसलहतें हैं इनका इंतजाम बैन अल मुतकाफी ऐनी, ये दो हम मर्तबा लोगों के दरमियान होता है। ये निकाह की मसलहतों का इंतजाम दो हम पल्ला लोगों के दरमियान होता है। आदतन, आमतौर पर, आदत इसी तरह है, आम तौर पर इसी तरह होता है। तो हम पल्ला लोग हों तभी निकाह सही चलता है और निकाह की मसलहतें हासिल होती हैं। लिअन्न शरीफता तअबा, इसलिए क्योंकि शरीफा, शरीफा का क्या माना करेंगे, मुअज्जज औरत, शाबाश। शरीफा का माना शरीफ औरत के ना करना, बल्कि शरफ से है, यानी शरफ वाली मुअज्जज औरत। लिअन्न शरीफता, इसलिए क्योंकि मुअज्जज औरत जो है तअबा, वो इनकार करती है, अंतकूना मुस्तफरशतन लिल खसीसी, कि वो मुस्तफरशा बने खसीस, यानी घटिया आदमी के लिए, वो मुस्तफरशा बने घटिया आदमी के लिए। मैंने बताया था कि बीवी जो है वो इंसान का फिराश है और ये फिराश कवि है और इससे जो औलाद पैदा होगी वो खुद बखुद खावंद की शुमार होगी। और इसकी अगर नफी करना चाहता है तो फिर लियान के साथ नफी करना पड़ेगी, वैसे औलाद की नफी नहीं कर सकता भाई। तो अब देखो, ये खावंद हुआ मुस्तफरिश, वो है इस औरत को फिराश बनाने वाला, और औरत जो है वो मुस्तफरशा है भाई, इसमें मफूल है मुस्तफरशा, यानी जिसको फिराश बनाया गया है। तो शरीफ और मुअज्जज औरत वो इनकार करती है कि वो किसी घटिया और अदना आदमी के लिए मुस्तफरशा बने। अदना दर्जे के आदमी के लिए मुस्तफरशा बनना, इसको मुअज्जज औरत पसंद नहीं करती। और नीज याद रखो, ये निकाह के अंदर, निकाह में औरत के लिए गुलामी वाला माना है, क्योंकि औरत पर बहुत सी पाबंदियां आ जाती हैं। वो औरत मर्द की इजाजत के बगैर घर से भी नहीं निकल सकती, तो इस निकाह में औरत के लिए रिकियत और गुलामी वाला माना, यानी उसका कुछ ना कुछ असर पाया जाता है। तो औरत यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस पर हाकिम जो है वो घटिया दर्जे का आदमी बने, वो घटिया दर्जे के आदमी के महकूमा बने, इसको वो पसंद नहीं करेगी। कहते हैं अन्न शरीफत तअबा अंतकूना मुस्तफरशतन लिलखसीसी, इसलिए क्योंकि मुअज्जज औरत इनकार करती है कि वो मुस्तफरशा बने घटिया आदमी के लिए। फला बुद्ध मिन एतबारी, लिहाजा कफात का एतबार जरूरी है, हम मर्तबा होने का एतबार जरूरी है। बेखिलाफी जानिबिहा, बेखिलाफ औरत की जानिब, यानी मर्द तो हम पल्ला होना चाहिए, औरत का हम पल्ला होना जरूरी नहीं। बेखिलाफी जानिबिहा, बेखिलाफ औरत की जानिब में, यानी वहां कफात मोतबर नहीं है। लिअन्न ज़ौज मुस्तफ़रिशुन, इसलिए क्योंकि खावन जो है वो इसको फिराश बनाने वाला है। फला तग़ीज़ुहु दना अतुल फिराश, तगीज़ु गजबनाक करना, फला तगीज़ुहु, लिहाजा मर्द को गजबनाक नहीं करेगा। दना अतुल फिराशी, फिराश का घटिया और अदना होना, अगर औरत अगर अदना या घटिया खानदान से है तो मर्द मुस्तफरिश है, मर्द उस पर हाकिम है, लिहाजा ये बात उसे गजबनाक नहीं करेगी, उसे गुस्सा इस बात पर नहीं चढ़ेगा कि उसकी औरत तो अदना खानदान वाली है
जी।
बात समझ में आ गई, क्योंकि नसब वगैरह सारा मर्द की तरफ से चलेगा, औरत कम खानदान वाली भी है, फिर भी जो औलाद है वो तो बाप के खानदान की ही शुमार होगी भाई। लिहाजा चूंकि नसब मर्द की तरफ से होता है, नीस हाकिम भी मर्द होता है, हुक्म उसी का चलता है, तो लिहाजा औरत अगर कम खानदान वाली भी हुई तो ये बात उसको गजबनाक नहीं करेगी भाई। ये माना है लिअन्न ज़ौज मुस्तफ़रिशुन, क्योंकि खावंद उसको फिराश बनाने वाला है। फला तग़ीज़ुहु दना अतुल फिराशी, लिहाजा फिराश का अदना और घटिया होना ये उसको गजबनाक नहीं करेगा, ये बात उसको गुस्सा नहीं चढ़ाएगी। व इदा ज़व्वजतिल मरअतु नफ्सहा मिन गैरि कुफ़्इन, और जब औरत निकाह कर दे नफ्सहा अपनी जात का, मिन गैरि कुफ़्इन गैर कुफ़ में, कम मर्तबा के लोगों में अगर औरत ने खुद अपना निकाह कर दिया तो कहते हैं फलिल औलिया ई अन युफर्रिकू बैनहुमा, तो औलिया को यह हक है कि वो जुदाई करवा दें उन दोनों के दरमियान। दफअन लिज़ररिल आरि अन अनफुसिहिम, दूर करने के लिए अपनी जात से आर के जरर को। भाई देखो, औरत अगर कम मर्तबा के लोगों में निकाह कर लेगी तो यह खानदान वालों के लिए ऐब बन जाएगा, ताना बन जाएगा। तो लिहाजा औलिया को हक है कि वो एतराज कर सकते हैं, वो काजी के पास जाकर मुकदमा कर सकते हैं, तो काजी उनमें जुदाई करवा देगा। बात समझ में आ गई? तो यहां तो आया मतन में कि औलिया एतराज कर सकते हैं, औरत अगर गैर कुफ में निकाह करेगी तो औलिया क्या कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं और काजी के पास जाकर निकाह तोड़वा सकते हैं। लेकिन याद रखो, मैंने पहले भी जिक्र किया, फतवा इस पर है कि यह निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। वजह यह कि इस गैर कुफ में औरत निकाह करेगी तो औलिया को शदीद तकलीफ होगी, भाई यह बात उनके लिए ताने का बाइस बन जाएगी। लेकिन पता नहीं इतनी हिम्मत वो करते हैं या नहीं कि काजी के पास भी जाएं और मुकदमा भी लड़ें, और फिर पता नहीं काजी भी इंसाफ करता है या इंसाफ नहीं करता। लिहाजा फतवा इस पर है, और वही इमाम साहब का दूसरा कौल भी है कि अगर औरत गैर कुफ में निकाह करेगी तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। जबकि यहां ऊपर मतन में तो आया कि अगर औरत गैर कुफ में निकाह करेगी, फलिल औलिया अय्युफर्रिकू बैनहुमा, औलिया उनमें जुदाई करवा सकते हैं। मालूम हुआ निकाह मुनाकिद हो चुका है, अब औलिया काजी के पास जाकर जुदाई करवाना चाहे तो जुदाई करवा सकते हैं। यह एक रिवायत है, लेकिन इमाम साहब से दूसरी रिवायत के मुताबिक यह निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा और उसी पर फतवा है। भाई यह माना है फलिल औलिया अय्युफर्रिकू बैनहुमा, तो औलिया का यह हक है कि वह इन दोनों के दरमियान जुदाई करवा दें, दफअन लिज़ररिल आरि अन अनफुसिहिम, दूर करने के लिए आर के जरर को अपनी जात से, कि आर और ताने को क्या कर दें, अपने आप से दूर कर दें। आगे देखिए भाई, कहते हैं सुम्मल कफात तुअतबरु फिन नसबिली अन्नहु यकउ बिही तफाखुरु। भाई अब वो चीजें बयान करने लगे हैं जिनमें कफात मोतबर है। पहली चीज जो उनमें बयान फरमा रहे हैं वो है नसब, नसब यानी खानदान। भाई और वजह यह कि खानदान जितना ऊंचा होता है लोग उस पर फख्र करते हैं, और खानदान जितना कम हो उस पर लोग ताने देते हैं। तो मालूम हुआ नसब ऐसी चीज है जिस पर लोग फख्र करते हैं, लिहाजा इसके अंदर भी बराबरी का एतबार किया जाएगा। ये जितनी चीजें कफात में जिक्र होंगी ये सब वो चीजें हैं जिन पर लोग फख्र करते हैं और इनमें कमी पर हार महसूस करते हैं, तो इसलिए इनका एतबार है। जो कहते हैं सुम्मल कफात तुअतबरु फिन नसब, फिर कफात जो है बराबरी जो है मोतबर है नसब में, लिअन्नहु यकउ बिही तफाखुरु, इसलिए क्योंकि इसके जरिए तफाखुर होता है यानी बाहम एक दूसरे पर फख्र करना, तो बाहम एक दूसरे के मुकाबले में फख्र करना इसके जरिए होता है। फकुरैश उन बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़िन, तो कुरैश जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं, कुरैश जो हैं एक दूसरे के कुफ हैं। भाई मैंने आपको बतलाया था कि अगर इस तरह की इबारत कहीं आ जाए, मसलन जैसे यहां पर है फकुरैशुन बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़िन, तो अमूमन तुलबा उसका तर्जमा यूं करते हैं कि कुरैश जो है वो उनमें से बाज कुफ हैं बाज के, तो यूं ये बामुहावरा तर्जमा नहीं। भाई अवाम के सामने बामुहावरा आसान तर्जमा होना चाहिए, तो यूं तर्जमा करेंगे फकुरैशुन बाजुहुम अकफा उन लिबाजिन, के कुरैश जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं, कुरैश एक दूसरे के कुफ हैं। भाई याद रखना ये जो कुरैश है इसके अंदर बहुत से छोटे कबीले शामिल हैं। भाई कुरैश अरब का एक बड़ा कबीला है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से कबीले हैं। ये कबीले जो हैं बाप दादा के नाम की निस्बत से मशहूर हो जाते हैं, मसलन कोई एक बाप दादा मशहूर गुजरा तो आगे उसकी सारी औलाद उसी के नाम से मशहूर हो जाती कि ये उस फुलां की औलाद है। तो इसी तरह कुरैश के अंदर बहुत से छोटे कबीले हैं जो बाद में आने वाले बाप दादों के नाम से मशहूर हो गए। मसलन कुरैश में बनू हाशिम भी शामिल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है। इसी तरह बनुल मुत्तलिब जो हैं वो भी शामिल हैं, बनू असद हैं, बनू अब्दे शम्स हैं, बनू उमैया हैं, बनू अब्बास वगैरह, बहुत से ये कबीले ये कुरैश के अंदर दाखिल हैं। तो क्या कुरैश वाले एक दूसरे के कुफ हैं या नहीं? हर कबीला कहता है हमारा खानदान आला है, तो क्या ये एक दूसरे के कुफ हैं या नहीं? तो याद रखो ये सब कुरैश वाले एक दूसरे के कुफ हैं। बात समझ में आ गई? बाहम बेशक एक दूसरे पर फख्र करते हैं, एक कहता है हमारा कबीला आला है, दूसरा कहता है हमारा आला है, लेकिन ये सब एक दूसरे के कुफ हैं, हम पल्ला हैं। लिहाजा एक कुरैशी औरत ने किसी भी और कुरैशी खानदान के मर्द से निकाह कर लिया तो हम ये कहेंगे इसने अपने कुफ में निकाह किया है भाई। तो ये माना है फकुरैश उन बाजुहम अकफा उन लिबाजिन, तो कुरैश जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं। वल अरबु बाजुहम अकफा उन लिबाजिन, और अरब जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं, यानी कुरैश के अलावा जितने अरब हैं वो सब एक दूसरे के कुफ हैं। किसी एक कबीले की औरत किसी दूसरे कबीले के मर्द से निकाह कर ले तो हम ये नहीं कहेंगे ये गैर कुफ में निकाह किया है, क्योंकि दोनों अरब हैं तो दोनों एक दूसरे के कुफ हैं भाई। कहते हैं वल असलु फीही कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और कहते हैं असल इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल है, आपने फरमाया कुरैश उन बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़, इनके कुरैश जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं। बतनुन बि बतनीन, बतन कहते हैं बड़े कबीले के अंदर कोई छोटा कबीला जो है वो बतन कहलाता है। जैसे मैंने अभी बतलाया कि कुरैश एक बड़ा कबीला है तो उसके तहत बहुत से छोटे कबीले होंगे, बनु मैया है, बनु अब्बास है, बनु असद है, बनु अब्द शम्स वगैरह, ये सब छोटे कबीले। तो कहते हैं कुरैश वो एक दूसरे के कुफ हैं। बतनुन भी बतनीन, हर बतन दूसरे बतन का तर्जमा यहां याद रखना भाई, आप परेशान होंगे तर्जमा क्या करें। बतनुन भी बतनीन, हर बतन दूसरे बतन का, यानी हर बतन दूसरे बतन का कुफ है भाई कुरैश में से। वल अरब बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़िन, और अरब जो है वो एक दूसरे के कुफ हैं। कबीलतुम भी कबीलतीन, यानी एक कबीला दूसरे कबीले का कुफ है भाई। वल मवाली बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़िन, और मवाली, मवाली से मुराद अजमी लोग हैं यानी गैर अरब हैं भाई। वल मवाली बाज़ुहुम अकफा उन लिबाज़िन, और मवाली जो हैं यानी अजमी जो हैं वो एक दूसरे के कुफ हैं। रजुलुम बिरजुलिन, एक मर्द दूसरे मर्द का, एक आदमी दूसरे आदमी का कुफ है। बात समझ में आ गई। तो यहां मवाली लफ्ज आया, मैंने बताया इससे मुराद अजमी है भाई। तो ये अजमियों का नाम पड़ गया था मवाली भाई, इनको क्या कहते थे मवाली, इनका नाम पड़ गया। मवाली जमा है मौला की, और मौला के माने मददगार के भी हैं, और मौला के माने आजाद किया हुआ, यानी कोई शख्स पहले गुलाम था और उसको आजाद कर दिया जाए तो वो भी क्या कहलाता है अरबी जुबान में, मौला कहलाता है। तो चूंकि ये अरब जो है अक्सर अजमियों पर गालिब आ जाते तो ये अजमी उनके फिर महकूम बन जाते, उनके मददगार होते थे, तो इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया मवाली, यानी ये मददगार हैं। या ये मवाली मौला से है जिसका माना है आजाद किया हुआ। तो कदीम जमाने के अंदर जंगें होती थी और जो गालिब आ जाते वो दूसरे जो कैदी बनते उन सब मर्द औरतों को गुलाम और बांदियां बना लेते थे। तो अरब भी आजमियों पर गालिब आ जाते तो उनको गुलाम और बांदियां बना लेते, और फिर उनको आजाद किया जाता था तो वो उनके क्या कहलाते, मौला कहलाते थे। तो आजमियों का नाम ही मवाली पड़ गया भाई, चाहे फिर अरबों ने उनको गुलाम बनाया या ना बनाया। कतई नजर इससे जैसे किसी का कोई नाम मशहूर हो जाए तो वो ही हर तरफ फैल जाता है। तो ये चूंकि इनमें से बास जो थे वो आजाद किए हुए थे, वो मौला थे, तो उनकी वजह से बाकी सारों का नाम भी क्या पड़ गया, मवाली ही पड़ गया, कि ये सब गोया आजाद शुदा है भाई। तो मुराद इससे आजमी लोग हैं भाई। आगे देखिए वला युअतबरु तफाजुलु फी मा बैन कुरैशिन लिमा रवैना, और तफाजुल कहते हैं बाहम एक दूसरे पर बर्तरी का दावा करना, एक कहे मैं अफजल हूं दूसरा कहे मैं अफजल हूं। तो कुरैश के कबीले तो एक दूसरे पर फजीलत का दावा करते हैं, हर कबीले वाला कहता है हमारा कबीला आला है, तो क्या ये तफाजुल मुअतबर है? कहते हैं नहीं, हदीस में पीछे जिक्र हो गया कि कुरैश जो है एक दूसरे के कुफ हैं, लिहाजा इस तफाजुल का कोई एतबार नहीं। एक कुरैश वाली औरत किसी दूसरे कबीले के कुरैशी नौजवान से शादी कर ले तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसने गैर कुफ में निकाह किया है, बल्कि क्या कहेंगे कि ये इसने कुफ ही में निकाह किया है। यह माना है वला युअतबरु तफाजुलु, और तफाजुल मुअतबर नहीं है, फी मा बैन कुरैशिन कुरैश के बीच में, लिमा रवैना उस हदीस की वजह से जो अभी हमने रिवायत कर दी। वअन मुहम्मदिन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से यह रिवायत है, इल्ला अन यकून नसबन मशहूरन का अहली बैतिल खिलाफती। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरैश के अंदर तफाजुल मुअतबर नहीं, इल्ला अन यकून नसबन मशहूरन, मगर यह कि अगर वो नसब मशहूर हो, नसब क्या हो जाए, मशहूर हो जाए। का अहले बैतिल खिलाफती, जैसे कि खिलाफत के अहले बैत, खिलाफत के घर वाले, यानी खलीफा की औलाद मुराद है, खलीफा की औलाद मुराद है। यानी अगर नसब ऐसा है कुरैश में से जो मशहूर हो जाए जैसे खलीफा की औलाद है, तो वहां तफाजुल मोतबर है, वहां बरतरी का दावा मोतबर है। भाई इस पर सवाल पैदा होता है कि भाई हदीस में तो आया कि तफाजुल मोतबर नहीं है, सब एक दूसरे के कुफ हैं, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह कैसे फरमा रहे हैं कि बाज जगह तफाजुल मोतबर है। तो आगे साहिब हिदायत बतलाएंगे कि गोया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने यह जो फरमाया ये खिलाफत की ताजीम के तौर पर फरमाया है, और नीस फितने का दरवाजा बंद करने के लिए यह उन्होंने फरमाया है। उनके कहने का यह मतलब नहीं है कि वहां कफाअत है ही नहीं, कफाअत तो है, वो तो हदीस में आ चुका है, लेकिन फितने का दरवाजा बंद करने के लिए और खिलाफत की ताजीम के तौर पर उन्होंने यह फरमाया, क्योंकि खलीफा की औलाद है वो यकीनन अपने आप को आला समझेगी, और नीज वो कुव्वत के अंदर है, इख्तदार के अंदर है, ताकत के अंदर भी हैं। लिहाजा अब अगर उनके खानदान की कोई औरत जो है किसी दूसरे कबीले के कुरैशी नौजवान से निकाह कर ले और फिर खलीफा की बाकी औलाद उस पर एतराज करे, तो अगर कोई मुफ्ती ये फतवा दे कि ये तो आपका कुफ है लिहाजा आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात तो उनको और ज्यादा गजबनाक कर देगी भाई। और चूंकि वो तो ताकतवर लोग हैं, खलीफा की औलाद हैं, तो कहीं इस मुफ्ती को नुकसान ना पहुंचाएं या वो जो नौजवान है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर तफाजुल का एतबार किया जाएगा कि भाई ये नौजवान बेशक कुरैशी है लेकिन इस खलीफा की औलाद में से जो लड़की है ये उसका कुफ नहीं, तो फिर वहां जुदाई करवा दी जाएगी, और इस तरह देखो जुदाई करवाकर फितना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जुदाई भी नहीं करवाई जाएगी तो फिर यकीनन खलीफा की औलाद ताकतवर है, फितना फैलने का खतरा होगा। बात समझ में आ गई। और नीज फितने का दरवाजा इस तरह भी बंद हो जाए कि आम लोग, आम कुरैशी भी खलीफा की औलाद में जो औरतें हैं उनकी उम्मीद न लगाने लगें, वरना उससे तो कई फितने फैलेंगे। बात समझ में आ गए। तो ये फितने का दरवाजा बंद करने के लिए उन्होंने फरमाया। तो कहते हैं वान मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है कि इल्ला अन यकून नसबन मशहूरन, के तफाजुल मोतबर नहीं है मगर यह कि नसब मशहूर हो। काहली बैतिल खिलाफती, जैसे कि खिलाफत के घर वाले हैं यानी खलीफा की जो औलाद है। कान्नहु काला ताजीमन लिल खिलाफती व तस्कीनन लिल फितनती, गोया के इमाम मोहम्मद रहमला ने खिलाफत की ताजीम के तौर पर यह फरमाया। व तस्कीनन लिल फितनती, और फितने को रोकने के लिए यह फरमाया। खलीफा की औलाद तो ताकतवर लोग होंगे, तो यहां अगर तफाजुल का एतबार न किया जाए तो फिर फितना फैलने का खदशा है। बात समझ में आ गई। वह बनू बाहिला तलैसू भी अकफा इन लियामतिल अरबी, और बनू बाहिला वो जो है आम अरब के कुफ नहीं। बनू बाहिला भाई अरब का कोई कबीला गुजरा है। बाहिला, बाहिला नाम की कोई औरत थी, उसकी औलाद जो है वो बनू बाहिला कहलाती है। तो ये उस औरत के नाम से ये कबीला मशहूर है, और कहते हैं ये आम अरबों का कुफ नहीं। वजह यह कि इनके अंदर बाज बड़ी घटिया किस्म की आदतें थीं, जिनको तमाम अरब बड़ा बुरा और घटिया समझते थे और इनको हकीर समझते थे, तो अरब इनको अपने बराबर का नहीं समझते थे, तो ये आम अरब के कुफ नहीं है भाई। कहते हैं वह बनू बाहिला लैसू भी अकफा इन ले आम मतिल अरबी, और बनू बाहिला जो है वो आम अरब के कुफ नहीं है। ले अन्नहुम मारूफून बिल खसासती, इसलिए क्योंकि वो मशहूर हैं बिल खसासती, घटियापन के साथ, यानी उनमें बहुत सी घटिया और अदना आदतें हैं उनके साथ ये मशहूर हैं। याद रखो खानदानों के अंदर बास आदतें होती हैं भाई, आदतें होती हैं और लोगों में मशहूर होती हैं, लोगों को पता होता है। तो मुख्तलिफ खानदानों में मुख्तलिफ किस्म की आदतें होती हैं, तो उस खानदान के तमाम अफराद में तो वह आदतें नहीं होंगी लेकिन अक्सर के अंदर वह आदतें मिलती हैं भाई, और एतबार अक्सर का ही होता है। तो ये जो बनू बाहिला वाले हैं इनमें अक्सर अफराद में ये इनमें खसीस और घटिया अदना आदतें पाई जाती हैं, तो लिहाजा अरब इनको हकीर समझते हैं, तो ये आम अरबों के बराबर के नहीं। कहते हैं वह अमल मवाली, और बाकी आजमी लोग जो हैं, फमन कान लहू अबवानी फिल इस्लामी फसाइदन, तो अब दूसरी चीज आ गई। अरबों के अंदर तो नसब पर फखर किया जाता है जबकि अजमियों के अंदर इस्लाम पर फखर किया जाता है, लिहाजा इस्लाम में भी कफाअत का एतबार किया जाएगा। लिहाजा एक औरत ने निकाह किया एक मर्द से, इस औरत का बाप मुसलमान है, दादा नहीं मुसलमान, लेकिन बाप मुसलमान हुआ था और ये उसकी बेटी है मुसलमान, इसने एक मर्द से निकाह किया और वो मर्द मुसलमान है लेकिन उस मर्द का बाप नहीं मुसलमान, तो देखो लड़की के आबा में से एक मुसलमान है और मर्द के आबा में से कोई भी नहीं मुसलमान, तो ये उस लड़की का कुफ नहीं है, ये उस लड़की का कुफ नहीं है। और फिर ये भी याद रखना, इस्लाम के अंदर जो कफात है वो सिर्फ दादा तक मोतबर है, इसलिए क्योंकि नसब दादा तक पूरा हो जाता है, यानी लोग जब एक दूसरे से तआरुफ करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, तो बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा दादा का जिक्र किया जाता है, पर दादा वगैरह का जिक्र नहीं किया जाता। लिहाजा इस्लाम के अंदर भी कफात दादा तक मोतबर है। लिहाजा एक शख्स है, उसका बाप और दादा दोनों मुसलमान हैं, पर दादा नहीं मुसलमान था लेकिन बाप और दादा दोनों मुसलमान हैं, तो देखो दादा तक ही बराबरी मोतबर है और वो दोनों मुसलमान हैं। लिहाजा ये शख्स निकाह कर लेता है एक ऐसी औरत से जिसके ऊपर कई आबा मुसलमान गुजरे हैं, बाप दादा परदादा ऊपर तक भाई, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मर्द इस औरत का कुफ नहीं, इस मर्द के सिर्फ दो आबा मुसलमान हैं, औरत के कई आबा मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये मर्द इस औरत का कुफ है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कफात सिर्फ कहां तक मोतबर है, दादा तक, और मर्द का दादा मुसलमान है, तो ये इस औरत का कुफ है। कहते हैं वह अम्मल मवाली और बाकी अजमी लोग जो हैं, फमन कान लहू अबवानी फिल इस्लामी फसाइदन, पस जिसके दो अब हैं इस्लाम के अंदर फसाइदन या ज्यादा, फहुआ मिनल अकफाई, तो वो हम पल्ला लोगों में से है, वो बराबर के लोगों में से है, यानी लिमन लहू आबा उन फी, यानी उस के लिए जिसके कई आबा हैं, जिसके कई आबा इस्लाम में गुजरे हैं, इस आदमी के सिर्फ दो आबा हैं इस्लाम में और दूसरे के कई आबा हैं इस्लाम में, तो दोनों को एक दूसरे का हम पल्ला कहेंगे। वजह यह कि इस्लाम के अंदर कफात कहां तक मोतबर, सिर्फ दादा तक, और दादा तो इसका मुसलमान है जी। वो कहते हैं वमन असलमा बी नफसी ही अवलहू अबू वाहिदुन फिल इस्लामी, और जो शख्स खुद मुसलमान हुआ, अवलहू अबू वाहिदुन फिल इस्लामी, यानी या उसका एक अब जो है इस्लाम में है, ला यकून कुफ अन लिमन लहू अबवानी फिल इस्लामी, तो ये शख्स कुफ नहीं होगा, लिमन लहू अबवानी फिल इस्लामी, जिसके दो अब इस्लाम में है, एक औरत है उसके बाप और दादा दोनों मुसलमान हैं और इसने एक मर्द से निकाह किया, वो मर्द खुद मुसलमान हुआ है, उसका बाप भी नहीं मुसलमान, या उसका सिर्फ बाप मुसलमान है, तो ये औरत का कुफ नहीं, क्योंकि तो औरत के तो बाप और दादा दोनों मुसलमान हैं और मर्द अकेला मुसलमान है या उसका बाप मुसलमान गुजरा है। फिर तर्जमा देखिए भाई, वमन असलमा बी नफसी ही, और जो शख्स खुद मुसलमान हुआ, औलहू अबू वाहिदुन फिल इस्लामी, या उसका एक बाप इस्लाम में गुजरा है, यानी सिर्फ बाप मुसलमान हुआ है, दादा नहीं भाई, ला यकून कुफ अन, तो ये शख्स कुफ नहीं है, लिमन लहू अबवानी फिल इस्लामी, उस शख्स का जिसके दो अब इस्लाम में गुजरे हैं, लिअन्न तमामन नसब बिल अबी वल जद्दी, इसलिए क्योंकि नसब का पूरा होना वो अब और जद के जरिए होता है, कोई आदमी जब अपनी पहचान करवाता है तो अमूमन बाप और दादा तक का नाम लेता है कि मैं फुलां इब्ने फुलां का बेटा हूं भाई, इससे ऊपर का नाम वो अमूमन जिक्र नहीं करता, तो नसब बाप और दादा पर पूरा हो जाता है। वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाहु अलहकल वाहिदा बिल मुसन्ना, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने एक को भी दो के साथ मिलाया है, कमा हुआ मजहबुहू फी तारीफी, जैसे कि उनका मजहब है तारीफ के अंदर, अर्रफा युअर्रिफु, तारीफ का माना है पहचान करवाना, पहचान करवाना, याद रखो शहादत के अंदर अगर कोई शख्स गवाही दे रहा है और गवाही के अंदर उसको किसी तीसरे आदमी का जिक्र करना पड़ेगा जो वहां मौजूद नहीं है काजी के पास, तो उसका फिर वो जरूरी है कि वो उस गायब शख्स के बाप का भी नाम ले और दादा का भी नाम ले ताकि पूरी पहचान हो जाए। अर्रफ युअर्रिफु, तारीफ का क्या माना है पहचान, तो गवाह भी गायब की जब पहचान करवाएगा तो बाप का भी उसका नाम लेगा और दादा का भी, ये तारीख में जरूरी है तरफेन के नजदीक। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ बाप का नाम जिक्र करना काफी है, दादा का नाम जिक्र करना जरूरी नहीं। मालूम हुआ वो नसब के अंदर सिर्फ एक का एतबार करते हैं कि वो काफी है, जबकि तरफेन दो का एतबार करते हैं, फर्क समझ में आया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक एक औरत जो है उसके सारे ऊपर आबा मुसलमान गुजरे हैं। यह निकाह करती है एक ऐसे आदमी से जिसका सिर्फ बाप मुसलमान हुआ था, दादा भी मुसलमान नहीं, तो एक अब तो मुसलमान है। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी किसका एतबार करते हैं? एक अब का। लिहाजा उनके नजदीक ये मर्द इस औरत का कुफ है, जबकि तरफैन के नजदीक ये मर्द इस औरत का कुफ नहीं है, क्योंकि दादा इसका मुसलमान नहीं। तो यह माना है वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाह अलहकल वाहिद बिल मुसन्ना, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने एक को भी दो के साथ मिलाया है। कमा हुआ मजहबहू फी तारीफी, जैसे कि उनका मजहब है तारीफ यानी पहचान करवाने में, कि जब गवाह किसी गायब की पहचान करवाए। वमन असलम बि नफ्सिही ला यकूनु कुफ्अन लिमन लहू अबू वाहिदुन फिल इस्लामी। अब एक औरत है उसका बाप मुसलमान गुजरा है, दादा नहीं, तो एक अब मुसलमान है। यह औरत निकाह कर लेती है कैसे नौजवान से जो खुद मुसलमान हुआ है, उसका अब भी नहीं मुसलमान। तो याद रखो यह मर्द इस औरत का कुफ नहीं, क्योंकि इस औरत का एक अब मुसलमान गुजरा है और इस मर्द का एक भी अब मुसलमान नहीं गुजरा, तो यह इसका कुफ नहीं। तो कहते हैं वमन असलमा बी नफ्सिही, और जो शख्स खुद मुसलमान हुआ, ला यकूनु कुफ्अन, तो यह शख्स कुफ नहीं होगा, लिमन लहू अब वाहिदुन फिल इस्लामी, उस शख्स का जिसका एक बाप इस्लाम में गुजरा है। लिअन्न तफाखुर फीमा बैनल मवाली बिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि आजमियों के दरमियान बाहमी फखर जो होता है बिल इस्लामी, वो इस्लाम के जरिए होता है। वो बाहमी एक दूसरे पर जो फखर का इजहार करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? इस्लाम के जरिए। वल कफा अतुफिल हुर्रियति नजीरुहा फिल इस्लामी फी जमीई मा ज़करना। अब ये तीसरी चीज आ गई, कफात फिल हुर्रियत, आजादी में कफात। एक शख्स है वो पहले गुलाम था, उसको किसी ने आजाद कर दिया, अब ये एक आजाद औरत से निकाह करना चाहता है और उस औरत का बाप भी आजाद है, दादा भी आजाद है, तो याद रखो ये शख्स इस औरत का कुफ नहीं। आगे साहिबे हिदायत आपको बतलाएंगे भाई कि ये जो आजादी के अंदर कफात है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इस्लाम में कफात थी, और इस्लाम में कफात कहां तक मोतबर है? दादा तक मोतबर है। तो यहां हुर्रियत में भी दादा तक आजादी मोतबर है, लिहाजा एक शख्स है उसका बाप जो था वो किसी ने उसको आजाद किया था, वो गुलाम था, तो इसका एक अब आजाद है, एक अब। और दूसरी तरफ औरत है उसके कई अब आजाद गुजरे हैं, बाप दादा परदादा वगैरह, और इस आदमी का सिर्फ एक अब आजाद है, लिहाजा ये आदमी इस औरत का कुफ नहीं है, क्योंकि आजादी पर भी लोग फखर करते हैं, गुलामों को हकीर समझा जाता है। बात समझ में आ रही है? हां, अगर एक आदमी है उसके बाप और दादा दोनों आजाद थे, दादा को किसी ने आजाद कर दिया था, तो दादा भी आजाद, बाप भी आजाद और ये भी आजाद, और दूसरी तरफ औरत जो है उसकी कई पुश्तें आजाद चली आ रही हैं, बाप दादा परदादा ऊपर तक भाई, तो भी ये शख्स इस औरत का कुफ है। तो ये हुर्रियत के अंदर इस औरत का कुफ है, हुर्रियत के अंदर इस औरत का कुफ है भाई, क्योंकि इस्लाम और हुर्रियत कहां तक मोतबर है? दादा तक, और दादा तक तो ये शख्स के भी दादा मुसलमान भी गुजरा है और आजाद भी गुजरा है, लिहाजा ये इस औरत का कुफ है, दादा से ऊपर वालों को नहीं देखेंगे, अगरचे ऊपर वाले इसके गुलाम गुजरे हैं इस मर्द के। तो कहते हैं वल कफा अतु फिल हुर्रियति नजीरुहा फिल इस्लामी, नजीरुहा यहां जमीर ये भी कफात को राजिया है, लिहाजा इस हा जमीर को उठाएं और इसकी जगह अल कफात को रखें। अब इबारत जरा देखें गौर से, वल कफा अतु फिल हुर्रियति, और वो कफात जो हुर्रियत में होती है, नजीरुहा ऐ नजीरुल कफाअति फिल इस्लामी, ये नजीर है उस कफात की जो इस्लाम में होती है। एक कफात है हुर्रियत में, एक कफात है इस्लाम में, तो ये जो कफात फिल हुर्रियत है ये नजीर है किसकी? कफात फिल इस्लाम की, यानी इसके भी वही अहकाम है कफात फिल हुर्रियत के जो कफात फिल इस्लाम के अहकाम थे भाई। ये माना है वल कफात फिल हुर्रियति नजीरुहा फिल इस्लामी, और कफात फिल हुर्रियत जो है ये नजीर है कफात फिल इस्लाम की, फी जमीई माजा करना, उन तमाम अहकामात में जो हमने जिक्र कर दिए। लिअन्न रिक असरुल कुफरी, इसलिए क्योंकि गुलामी ये भी कुफर का असर है, गुलामी भी क्या है? कुफर का असर है। मुसलमानों ने जो इलाके फतह किए तो वहां के लोगों को गुलाम बनाया, तो ये किसका असर था? कुफर का असर था, वो काफिर थे इसलिए गुलाम बनाया। लिअन्न रिक असरुल कुफरी, इसलिए क्योंकि गुलामी जो है कुफर का असर है। वफी ही माना जुल्ली, और नीज इसके अंदर हकारत वाला माना भी है, गुलाम को लोग हकीर समझते हैं, तो लिहाजा यहां पर कफात को देखा जाएगा। फयुअतबरु फी हुक्मिल कफाअति, लिहाजा कफात के हुक्म में इसका भी एतबार किया जाएगा। याद रखो यहां जितनी चीजें कफात में जिक्र कर रहे हैं ये वो चीजें हैं जिन पर लोग फखर करते हैं और न होने पर इसको हकीर समझा जाता है, तो लिहाजा इसलिए शरीयत ने भी इनका एतबार किया है। आगे देखिए, काल व तौतबरु ऐज़न फी दीनी, और नीज जो है ये कफात मोतबर है दीन के अंदर भी। आई दियानती यानी दीनदारी में, भाई मतन में तो आया कफात मोतबर है दीन में, साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि भाई दीन से दीन नहीं मुराद बल्कि अदियानती दीनदारी मुराद है, यानी तकवा वगैरह मुराद है, वरना असले दीन, भाई असले दीन में तो कफात जरूरी है। मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द से ही हो सकता है, गैर मुस्लिम से तो उसका निकाह ही नहीं हो सकता, तो असले दीन में तो कफात है ही जरूरी, उसकी बात अब नहीं कर रहे, बल्कि आप किस में कफात की बात कर रहे हैं, दीनदारी में। एक नेक है मुत्तकी आदमी है और गुनाहों से अपने आप को बचाता है, और दूसरा फासिक और फाजिर है, तो याद रखो इन दोनों में कफात नहीं है। लिहाजा औरत जो है वो नेक मुत्तकी और पारसा है या नेक मुत्तकी खानदान से ताल्लुक रखती है, और उसने निकाह एक ऐसे आदमी से कर लिया जो फासिक और फाजिर है, सबको पता है ये शराब पीता है, फाजिर आदमी है, लिहाजा मालूम हुआ यहां कफात नहीं, निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। तो दीनदारी में भी कफात मोतबर है। तो कहते हैं काल, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, वह तौतबरु ऐज़न फी दीन, की कफात मोतबर है दीन के अंदर भी। अयदियानती यानी दीनदारी में और तकवा में। वहादा कौल अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह का कौल है। हुवा सहीह, यही सहीह है, यही कौल सहीह है। भाई देखिए दरअसल यहां इमाम साहिब के बारे में दो रिवायतें हैं। भाई याद रखो इस मसले में इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो हैं वो दीनदारी में कफात का एतबार करते हैं, और जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दीनदारी में कफात मोतबर नहीं है, क्योंकि दीनदारी का ताल्लुक आखिरत से है, लिहाजा आखिरत की चीजों पर दुनिया में हुक्म नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, दीनदारी में भी कफात मोतबर है। अब इमाम साहब से इस बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत से पता चलता है कि वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं, वो भी दीनदारी में कफात का एतबार करते हैं, और दूसरी रिवायत से पता चलता है वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं और वो दीनदारी में कफात का एतबार नहीं करते। तो साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं, हुवा सहीह, यही बात सहीह है। भाई तो कहते हैं ये शेखैन रहिमहुमल्लाह का कौल है, हुआ सहीह, यही कौल सही है। लिअन्नहु मिन अअलल मफाखिरी, इसलिए क्योंकि ये फखर करने वाली चीजों में सबसे आला है। दीनदारी और तकवा तो फखर वाली चीजों में सबसे आला है। इनको खानदान अपनी दीनदारी पर फखर करता है कि अल्लाह ने उन्हें नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाई है। वल मरअतु तुअय्यरु बिफिस्क़ ज़ौजी, और औरत जो है तो अय्यरु, उसको ताने दिए जाते हैं, उसको आर दिलाई जाती है, बिफिस्क़ ज़ौजी, खावन के फासिक होने की वजह से, फौका मा, उससे ज्यादा तो अय्यरु, कि जो उसको आर दिलाई जाती है, ताने दिए जाते हैं, बिज़ाअती नसबी ही, उसके नसब के घटिया होने पर। ज़ाअतुन मस्तर है भाई, ज़ाअतुन याद रखना, और ज़ाअतुन और ज़ियातुन ज़ाद के फतहा और कसरा दोनों के साथ, और असल में ये क्या था, वेज़ौन था, वेज़ौन आपने पढ़ा है भाई, वादा याइदु वादाउं वाइदातन, कि जो भी मस्दर फ़िअलुन वजन पर आए और उसके फा की जगह वाओ हो, तो फिर वाओ को हजफ करके ये कसरा अगले हर्फ को दे दिया जाता है और आखिर में गोलता मिला दी जाती है, तो वेअदुन से क्या बन गया, ईदतुन, विज़नुन से क्या बन गया, ज़ीनतुन, तो लिहाजा ये असल में विज़ुन था, फिर वह हजफ करके ज़ात को ज़ेर दे दी गई, ज़ीअतुन हुआ, और इसमें ज़ात पर फतहा भी जायज है अगर उस फेल का मुजारे मफ्तूहुल आयन हो, वज़ा यज़ाउ, देखो मुजारे क्या है, मफ्तूहुल आयन है, तो फिर वहां आयन पर फतहा भी जायज है, लिहाजा ज़ीअतुन पढ़ना भी जायज, ज़ियातुन पढ़ना भी जायज, और ज़ातुन पढ़ना भी जायज। अब देखो बात यह चल रही है कि यह दीनदारी यह तो फखर वाली चीजों में से सबसे ज्यादा है। तो जैसे किसी औरत का खावंद अगर घटिया खानदान वाला हो तो जैसे उस पर औरतें उसको ताना देती हैं, इसी तरह अगर खावंद फासिक और फाजिर है और गुना वगैरह करता रहता है तो इस पर तो उस नसब से भी बढ़कर ताने दिए जाते हैं औरत को। तो यह माना है वल मर अतु तो अयरु बिफिस्क ज़ौजी, और औरत जो है उसको आर दिलाई जाती है खावंद के फासिक होने की वजह से, फौकमा तो अयरु बिज़ाअति नसबिही, उससे ज्यादा वो जो इस औरत को आर दिलाई जाती है नसब के घटिया होने की वजह से, वज़ा यज़ाउ का माना यहां घटिया होना, बिज़ाअति नसबिही, उस खावंद के नसब के घटिया होने की वजह से जो आर दिलाई जाती है उससे बढ़कर आर दिलाई जाती है खावंद के फासिक होने पर। وقال محمد رحمه الله لا يعتبر, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दीनदारी में कफात मोतबर नहीं, لانه من امور الاخره, इसलिए क्योंकि दीनदारी और तकवा जो है यह तो आखिरत की चीजों में से है, فلا تبتني احكام الدنيا عليه, लिहाजा इस पर दुनियावी अहकाम की बुनियाद नहीं रखी जाएगी, दुनियावी अहकाम इस पर मबनी नहीं होंगे, الا اذا كان يصفع ويسخر منه, हां इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दीनदारी जो है वो आखिरत के उमूर में से है, उस पर दुनियावी अहकाम मुरतब नहीं होंगे, लेकिन अगर खावंद ऐसा फासिक और फाजिर है कि लोगों में उसकी इज्जत ही नहीं है, गुनाह ऐसे खुले आम करता है कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता, जहां जाता है कोई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो फिर यहां कफात का एतबार किया जाएगा, मालूम है यह उस औरत का कुफ नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला इदा कान युस्फाउ व युस्खरु मिन्हु, मगर यह कि उस शख्स जो है जिसे औरत ने निकाह किया है उसको लोग उसके फिसक की वजह से युस्फाउ उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, व युस्खरु मिन्हु उसे मजाक किया जाता है, औ यखरुजु इलल अस्वाक सकराना, या वो निकलता है बाजारों की तरफ मदहोश होकर, नशावर चीजें इस्तेमाल करता है और इसी तरह नशे की हालत में बाजार की तरफ निकल जाता है, वयल अबू बिही सिबियान, और बच्चे उसे खेलते हैं यानी हंसी मजाक वगैरह करते हैं, तो फिर यहां कफात का एतबार किया जाएगा, लिअन्नहु मुस्तखफ्फुम बिही, इसलिए क्योंकि इस तरह के आदमी को हकीर समझा जाता है, मुस्तखफ्फुन बिही इसको हकीर समझा जाता है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए काल अब तोतबरु फिल माली, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कफात माल के अंदर भी मोतबर है, यह पांचवीं चीज आ गई, एक तो कफात फिल नसब थी, फिर कफात फिल इस्लाम, फिर कफात फिल हुर्रियत, फिर कफात फिल दीन यानी दीनदारी में, और अब पांचवीं है व तोतबरु फिल माल, और कफात फिल माल भी मोतबर है, वह अयकून मालिकन लिल महर व नफकती, और वो ये कि खावन जो है वो मालिक हो महर और नफके का, यानी इतना माल हो कि औरत का महर अदा कर सके और इतना माल हो कि घर का खर्चा चला सके, औरत को खर्चा वगैरह दे सके। तो कहते हैं वह हुआ अयकून मालिकन लिल महर व नफकती, और वो ये कि वो शख्स मालिक हो महर और नफके का। अब कितने नफके का मालिक हो भाई, तो बाज़ उलमा ने लिखा उसके पास कम से कम एक माह का नफका हो बीवी को खर्चा देने के लिए, और बाज़ों ने कहा कि कम से कम छह माह का नफका हो, बाज़ों ने एक साल का लिखा है, लेकिन आम उलमा फरमाते हैं कि अगर वो कारीगर नहीं है, कारीगर या पेशे वाला आदमी नहीं है, तो फिर कम से कम एक माह का खर्चा उसके पास होना चाहिए, और अगर कारीगर है फिर एक माह का खर्चा भी जरूरी नहीं है, बस इतना हो कि वो रोजाना कमा सके और घर का खर्चा चला सके, तो ये भी काफी है भाई। तो कहते हैं वह हुआ यकून मालिकन लिल महर व नफकती, कि वो शख्स मालिक हो महर और नफके का, वहादा हुअल मोतबर फी जाहिर रिवायती, और यही मोतबर है जाहिर रिवायत में, हत्ता अन्ना मन ला यमलिक हुमा औ ला यमलिक अहद हुमा ला यकून कुफअन, भाई ज्यादा मालदार होने की बात नहीं चल रही, इतना माल हो जिसे वो क्या कर सके, महर अदा कर सके और नफका दे सके बीवी को। कहते हैं वहादा हुअल मोतबर फी जाहिरी रिवायती, और जाहिर रिवायत में यही मोतबर है, इतना ही माल होना मोतबर है, हत्ता अन्न मन ला यमलिक हुमा औ ला यमलिक अहद हुमा ला यकून कुफअन, यहां तक कि जो शख्स इन दोनों का मालिक ना हुआ, एक औरत ने एक मर्द से निकाह किया है, उसके पास महर के पैसे भी नहीं और खर्चे के पैसे भी नहीं, और ला यमलिको अहदहुमा, या दोनों में से एक का मालिक नहीं है, महर के पैसे हैं तो नफका नहीं है, या नफका है तो महर नहीं है, तो ला यकूनु कुफअन, तो ये उस औरत का कुफ नहीं है। तर्जमा समझ में आया, हत्ता अन्ना मन ला यमलिकुहुमा, यहां तक कि जो शख्स इन दोनों यानी महर और नफके का मालिक न हुआ, औ ला यमलिकु अहदहुमा, या दोनों में से एक का मालिक न हुआ, ला यकूनु कुफअन, तो ये कुफ नहीं है, लिअन्नल महर बदलुल बुज़्अ फला बुद्द मिन ईफाईही व बिन नफकति क़िवामुल इज़दिवाजी व दवामुहु। भाई बतला रहे इन दोनों चीजों का होना क्यों जरूरी है, कहते हैं लिअन्नल महर बदलुल बुज़्अ फला बुद्द मिन ईफाईही, बुज़्अ मैंने बताया औरत की शर्मगाह को कहते हैं, कहते हैं जो महर है ये बदले बुज़्अ है, यानी उस औरत से जो वो सोहबत का मालिक बना है, उस औरत से जो नफा उठाने का मालिक बना है, महर तो उसका बदला है, लिहाजा इसकी अदायगी तो जरूरी है, लिहाजा इतना माल उसके पास होना चाहिए, और नीज नफका, नफके के जरिए तो फिर आगे इस जोड़ का, इस शादी का दवाम होगा, बीवी को खर्चा वगैरह देगा तो ये रिश्ता दवाम के साथ चलेगा, लिहाजा नफके का होना भी जरूरी है। भाई तर्जमा समझ में आ रहा है, कहते हैं ली अन अल महर बदलुल बुज़्अ, इसलिए क्योंकि महर जो है वो बुज़्अ का बदल है, फला बुद्द मिन ईफाईही, लिहाजा उसकी अदायगी जरूरी है, व बिन नफकति क़िवामुल इज़दिवाजी, और नफके के जरिए तो इज़दिवाज कहते हैं ये शादी को, और जोड़ जो है निकाह वाला जोड़ जो है मियां बीवी में, क़िवाम कहते हैं अज़ाए तरकीबी, जिससे कोई चीज बनती है, तो कहते हैं वह बिन नफकति क़िवामुल इज़दिवाजी व दवामुहु, और नफके के जरिए इस शादी के अज़ाए तरकीबी हैं, व दवामुहु, और उस नफके के जरिए इस शादी का दवाम है, नफका देगा तो शादी दायमी चलती रहेगी, वल मुरादु बिल महरी, महर का जिक्र आया, अब यह माना नहीं है कि उस शख्स के पास सारा महर होना चाहिए, बल्कि इतनी मिकदार महर जो औरत को पहली रात में तोहफा वगैरह खावन देता है, तो वो इतनी मिकदार कम से कम उसके पास होनी चाहिए भाई, हत्ता कि और औरतें बाद में उससे पूछती हैं कि खावन ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था, तो जितना मुतआरफ हो, लोगों में राइज हो आम तौर पर उस इलाके के अंदर, उतने महर का वो मालिक होना चाहिए। कहते हैं वल मुराद बिल महर कद्रु मा तआरफू ताजीलहू, के महर से मुराद इतनी मिकदार है कि जिसकी जल्दी अदायगी मुतआरफ हो लोगों में, आम उस इलाके में राइज हो, लिअन्ना मा वराअहू मुअज्जलुन उर्फन, इसलिए क्योंकि इसके अलावा जो है इससे जायद जो है वो मुअज्जल होता है उर्फन, यानी आम लोगों की आदत यह है कि बाकी महर जो है वो मुअज्जल होता है, वो औरत अमूमन मुतालबा करती ही नहीं है, वो जब मुतालबा करेगी तब अदा कर दिया जाएगा, वरना वो मुअज्जल होता है, यानी बाद में किसी वक्त दिया जाता है। भाई कहते हैं लिअन्ना मा वराअहू मुअज्जलुन उर्फन, यानी इसके अलावा जो बाकी महर होता है वो मुअज्जल होता है, यानी उसमें मुद्दत होती है उर्फन आम तौर पर। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु अतबर अल कुदरत अला नफकति दून अल महरी, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से एक रिवायत यह भी है कि उन्होंने नफके पर कादिर होने का एतबार किया है, महर का एतबार ही नहीं किया सिरे से, वो कहते हैं इस खामन के पास इतना माल हो कि यह खर्चा चला सके, औरत को खिला पिला सके, कपड़े दे सके, तो बस ये कफात है, महर का उन्होंने एतबार ही नहीं किया। भाई वान अबी यूसुफ रहमल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमल्लाह से एक रिवायत यह है, अन्नहु अतबर अल कुदरत अला नफकति, कि उन्होंने नफके पर कुदरत का एतबार किया है, दून अल महरी ना के महर पर, लिअन्नहु तजरिल मुसाहलतु फिल मुहूरी, मुहूर जमा है महर की, मुसाहलत कहते हैं सुस्ती को, लिअन्नहु तजरिल मुसाहलतु फिल मुहूरी, इसलिए क्योंकि महरों के अंदर जो है सुस्ती और नरमी जारी होती है, महर के मामले में नरमी की जाती है, औरतें फौरन उसका मुतालबा नहीं करती। भाई वह युअद्दुल मरउ क़ादिरन अलैहि बियसारी अबीही, और नीज मर्द जो है उसको महर पर कादिर शुमार किया जाता है, बियसारी अबीही, अपने वालिद के मालदार होने की वजह से, अगर मर्द के पास खुद माल ना भी हो लेकिन बाप के पास अगर माल मौजूद है उसके, तो फिर मर्द को भी महर की अदायगी पर कादिर ही शुमार किया जाता है। भाई बाप बेटे की तरफ से महर तो अदा कर देता है, लेकिन नफका हमेशा उसको खिलाता भी रहे ये वो अदा नहीं करेगा, तो निकाह करवा रहा है महर तो वो दे देगा, खावंद के पास महर के पैसे नहीं, तो बाप मालदार है तो खावंद को भी महर पर कादिर ही शुमार किया जाएगा। यह माना है वह युअद्दु अल-मर्उ क़ादिरन अलैहि, और मर्द को महर पर कादिर ही शुमार किया जाता है, भी यसारी अभी ही अपने बाप की मालदारी की वजह से, यसार कहते हैं खुशहाली और मालदारी। फअम्मल कफाअतु फिल गिना फमुअतबरतुन फी कौलि अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाह। यह तो था असल माल में कफात कि महर और नफके के बराबर माल हो, वैसे मालदारी। तो अब देखो, अब एक औरत ने वो करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखती है, वो एक ऐसे शख्स से निकाह कर लेती है जो ज्यादा मालदार नहीं है, तो क्या इस मर्द को इस औरत का कुफ समझा जाएगा या नहीं, मालदारी में कफात मोतबर है या नहीं, तो वह बयान कर रहे हैं। कहते हैं फअम्मल कफाअतु फिल गिना, और बाकी मालदारी के अंदर जो कफात है, फमुअतबरतुम फी कौली अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाह, तो ये तरफेन रहमल्ला के कौल में ये भी मोतबर है। हत्ता अन अल्फाइकतफिल यसारी, यहां तक कि वो औरत जो बुलंद है मालदारी में, ला युकाफी उहल कादिर अल महर व नफकती, तो उसका कुफ नहीं है वो शख्स जो कादिर है महर और नफके पर। एक शख्स के पास सिर्फ इतना माल है कि महर और नफका अदा कर सकता है, जायद माल नहीं है, और औरत खूब मालदार है, तो ये मर्द इस औरत का कुफ नहीं है। हां अगर दौलत है इसके पास भी लेकिन उनके मुकाबले में कम है, फिर कफात है। तो यहां कौन सी सूरत जिक्र हो रही है, औरत के पास ज्यादा माल है और मर्द के पास सिर्फ नफके और महर के बराबर माल है, यह कफात नहीं है। लेकिन अगर मर्द भी मालदार है लेकिन उनके मुकाबले में कम है, तो फिर कफात ही कफात है। भाई बात समझ में आ गई। लिअन्न अन्नास यतफाखरून बिलगिना, वजह इसकी यह है कि लोग जो है बाहम फखर करते हैं मालदारी के जरिए। वयतअय्यरून बिलफक्री, और आर महसूस करते हैं फकर के जरिए। वकाल अबू यूसुफ रहमल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमल्लाह फरमाते हैं, ला युअतबरू, के मालदारी में कफात मोतबर नहीं, लिअन्नहु ला सुबाता लहू, इसलिए क्योंकि माल के अंदर दवाम नहीं है, माल हमेशा दायमी किसी के पास नहीं रहता। इज़िल मालु गादिं व राइहुन, इसलिए क्योंकि माल जो है सुबह आने वाला है तो शाम को जाने वाला है, यानी माल तो आने जाने वाली चीज है। जैसे आपने इस वक्त देखा ये दुनिया के अंदर कोरोना फैला भाई, और अरबों पति लोग जो हैं वो बिल्कुल कंगाल हो गए भाई। तो माल तो आने जाने वाली चीज है। गादिन गदा यगदू से है, गदा यगदू गुदुवन का माना है सुबह के वक्त निकलना, और राह राह यरूह राहतन से है शाम के वक्त निकलना। तो गादिन सुबह के वक्त निकलने वाला, यानी दिन के अव्वल हिस्से में, राह कहते हैं दिन के आखिरी हिस्से में निकलने वाला। तो कहते हैं इज़िल मालु गादिन व राइहुन, यानी माल जो है वो तो सुबह आने वाला है और शाम को जाने वाला है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, व तुअतबरु फिस सनाई, और ये कफात जो है पेशों के अंदर भी मोतबर है। सनाई जमा है सनात की, पेशे भाई, जैसे जैसे कोई मोची है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, वगैरह मुख्तलिफ पेशे भाई, तो ये भी मोतबर है। कहते हैं वह तोतबरू फिस सनाई, और पेशों के अंदर भी कफात मोतबर है। वहादा इंद अबी यूसुफ व मुहम्मदिन रहिमहुमल्ला, और ये साहिबैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। वन अबी हनीफा तरहुल्ला फी दालिका रिवायतानी, और इमाम साहब से इस बारे में दो रिवायतें हैं। इमाम साहब से दो रिवायतें हैं, मालूम हो एक रिवायत में है कि पेशों में भी बराबरी मोतबर है, दूसरी रिवायत में है कि पेशों में बराबरी मोतबर नहीं है भाई। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु ला युअतबरु, के पेशों के अंदर बराबरी मोतबर नहीं, इल्ला अन यफ़हुशा, मगर यह कि वह खूब कसीर हो जाए, यानी घटिया होने में कसीर हो जाए। पेशा घटिया होने में, यानी खूब ज्यादा घटिया पेशा है, फिर वो मर्द उस औरत का कुफ नहीं है। मसलन औरत जो है उसके घर वाले वो ऊंचा पेशा है उनका, मसलन वो कपड़ा बेचने वाले हैं, या मसलन वो सुनार हैं, जेवरात वगैरह बनाते हैं, और जिससे औरत ने निकाह किया है वो मोची है या लोहार वगैरह है, तो मालूम हो ये उसका कुफ नहीं है भाई। तो इमाम यूसुफ रहमल्ला से रिवायत है कि अन्नहु ला युअतबरु, कि ये मोतबर नहीं है पेशों के अंदर बराबरी, इल्ला अन यफ़हुशा, मगर ये कि बहुत ज्यादा हो जाए घटिया होने में। कल हज्जामी वल हाइकी वद्दबाग, हज्जाम कहते हैं पछने लगाने वाला, कदीम जमाने में जो पछने लगाता था भाई, वो जिस्म पर सींगी वगैरह लगाकर फासिद खून को बदन से निकालता था, उसको हज्जाम कहते हैं भाई। या जैसे आजकल नाई है, मोची है और इसी तरह ये झाड़ू देने वाले हैं मुख्तलिफ, तो ये सब क्या है, अदना पेशे शुमार होते हैं, घटिया पेशे शुमार होते हैं। कल हज्जामी, जैसे कि हज्जाम है नहीं पचने लगाने वाला, वल हाइक, हाइक जो लाहे को कहते हैं जो कपड़े बुनने का काम करता है, व दबागी, और जैसे दबाग है खालों को दबागत देता है, भाई जानवरों की खाल है उसको उतारने के बाद दबागत वगैरह दी जाती है तो उसको महफूज किया जाता है, तो ये सब कम दर्जे के पेशे शुमार होते हैं। वजहुल एतबारी, एतबार की वजह यह है, एक कौल तो क्या हो गया कि इसका एतबार किया जाएगा भाई साहिबैन के नजदीक पेशों में भी कफात मोतबर, इमाम साहब से दो रिवायतें, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से भी एक रिवायत है कि ये पेशों में कफात मोतबर नहीं, इल्ला अय्या खुशा, मगर कि ये कि वो फर्क बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा घटिया पेशा हो फिर कफात का एतबार करेंगे। अब दोनों की वजह जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये पेशों में कफात मोतबर है उसकी क्या वजह है, और जिन्होंने कहा पेशों में कफात मोतबर नहीं उसकी क्या वजह है। कहते हैं वजहुल एतबारी, पेशों के अंदर कफात के मोतबर होने की वजह यह है कि अन्नास यतफाखरून बिशरफिल हिरफी, कि लोग जो हैं बाहम फखर करते हैं बिशरफिल हिरफ, हिरफ जमा है हिरफतुन की, ये पेशों को कहते हैं बिशरफिल हिरफी, पेशों के मुअज्जज होने पर लोग फखर करते हैं। वह यतअय्यरून बिदना अतिहा, और वो आर महसूस करते हैं बिदना अतिहा, पेशों के अदना और घटिया होने पर। वजहुल कौल आखरी, और दूसरे कौल की वजह की यह मोतबर नहीं है कि अनल हिरफत लैसत बिलाजिमतिन, वजह यह कि पेशे लाजिम नहीं होते किसी आदमी के साथ। व यमकिन तहव्वुल अनिल खसीसती इला नफीसती मिनहा, और मुमकिन होता है कि आदमी फिर जाए घटिया पेशे से आला पेशे की तरफ, तो घटिया से उमदा पेशे की तरफ पलटना मुमकिन है, एक आदमी एक पेशा छोड़कर दूसरा पेशा शुरू कर देगा, तो लिहाजा चूंकि यह लाजिम नहीं है इसलिए इसमें कफात मोतबर नहीं, जबकि एक कौल के मुताबिक कफात मोतबर है। भाई चलिए बस करें, बात समझ में आ गई, हल हो गया, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।